एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने खाने को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं समझा, मतलब उसे कहीं ज्यादा बना दिया। एक शेफ, एक लेखक, एक यात्री जिसने दुनिया को उसके असली कच्चे रूप में देखा और दिखाया।
हाँ बिल्कुल, एंथनी बॉर्डिन।
हाँ, एंथनी बॉर्डिन, और खास तौर पर हम उनकी किताब मीडियम रॉ, अ ब्लडी वैलेंटाइन टू द वर्ल्ड ऑफ फूड एंड द पीपल हु कुक के आईने में उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब आई थी 2010 में।
हाँ, उनकी जो पहली जबरदस्त हिट किताब थी ना, किचन कॉन्फिडेंशियल, उसके ठीक 10 साल बाद।
और ये जानना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ खाने या रेस्टोरेंट्स की कहानियों से कहीं आगे जाती है ना?
बिल्कुल, ये महज रेसिपी बुक तो है ही नहीं, इसमें हमें एक ज्यादा अनुभवी बॉर्डिन मिलते हैं, शायद थोड़े थके हुए भी लेकिन उतने ही तेज तरार। देखो, किचन कॉन्फिडेंशियल ने उन्हें जबरदस्त शोहरत दी थी।
हाँ, वो तो रातों रात स्टार बन गए थे।
सही, लेकिन मीडियम रॉ में वो उसी शोहरत की कीमत, उसके अंदर के जो विरोधाभास हैं और एक पब्लिक चेहरा होने की जो उलझने होती हैं, उनसे जूझते हुए दिखते हैं।
और उनकी कहानी आज भी क्यों खास है, मतलब आज क्यों सुने हम उन्हें?
क्योंकि वो जिन चीजों से जूझ रहे थे, जैसे असलीपन की तलाश, अपने पैशन को फॉलो करना, फिर कामयाबी मिलने पर जो मुश्किलें आती हैं, और खाने के जरिए दूसरी संस्कृतियों को समझना, ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी है, उतने ही ताजा।
हाँ, बात तो सही है। तो चलिए बॉर्डिन की इस यात्रा को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये सब?
उनका सफर शुरू हुआ न्यू जर्सी के एक उपनगर से, लियोनिया। एक आम सा मध्यवर्गीय परिवार था, पिता म्यूजिक इंडस्ट्री में थे, माँ न्यूयॉर्क टाइम्स में संपादक थी।
मतलब माहौल काफी पढ़ा लिखा अदब वाला रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, जोर पढ़ाई लिखाई और कल्चर पर था। लेकिन मजे की बात यह है कि जो टीनेजर एंथनी थे, उनका दिल कॉन्सर्ट हॉल या लिटरेरी इवेंट्स में नहीं लगता था।
कहाँ लगता था फिर?
रेस्टोरेंट की किचन की वो जो गहमा गहमी होती है, वो भाग दौड़, वो एड्रेनलिन रश, उसमें वो दुनिया उन्हें खींचती थी।
अच्छा,
ये तो काफी अलग बात है उस माहौल के हिसाब से।
हाँ, और फिर एक मतलब एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी जिंदगी में, बहुत कम उम्र में, शायद 12 साल के रहे होंगे जब परिवार के साथ फ्रांस गए।
फ्रांस, हाँ, फ्रांस का जिक्र तो उनकी कहानियों में बहुत आता है।
बिल्कुल, तो वहां पहली बार उन्होंने कच्चा सीप खाया, ऑयस्टर, और वो अनुभव उनके लिए वो सिर्फ एक नया स्वाद चखना नहीं था।
क्या था फिर वो?
वो जैसे एक दरवाजा खुल गया, एक पूरी नई दुनिया का, कच्ची, बेझिझक, थोड़ी खतरनाक लेकिन रोमांचक। उस एक सीप ने, आप कह सकते हैं, खाने के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और फ्रांस तो जैसे उनका एक आदर्श बन गया है ना, सांस्कृतिक तौर पर।
हाँ बिल्कुल, और उसी फ्रांसीसी अनुभव से शायद उनमें वो चीजें आईं, मतलब एक तरफ परिष्कार, दूसरी तरफ जिंदगी का वो खुरदुरापन, उसका भी सम्मान। खाने को सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक जुनून, एक इंटेलेक्चुअल अनुभव की तरह देखना।
और शायद यहीं से जो समाज के हाशिए पर लोग होते हैं, जो थोड़े विद्रोही होते हैं, उनके प्रति भी एक खिंचाव महसूस होने लगा होगा।
हाँ, लगता तो यही है। उनकी जवानी भी इसी पैटर्न पर चली। देखो, वॉसर कॉलेज जैसी अच्छी जगह में एडमिशन मिला लेकिन छोड़ दिया।
छोड़ दिया क्यों?
क्योंकि उनका मन किचन की दुनिया में था। ये सिर्फ करियर चुनना नहीं था, ये शायद एक तरह का बयान था कि मैं समाज की उम्मीदों पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर चलूंगा, असली रहूंगा।
तो उनकी असली पढ़ाई किचन में हुई?
बिल्कुल, केप कॉड और न्यूयॉर्क शहर की जो गर्म भभकती किचनें थी, वहां उन्होंने सीखा कि प्रोफेशनल कुकिंग असल में होती क्या है। वो लंबे घंटे, वो दबाव और वो तरह तरह के लोग।
कैसे लोग?
हर तरह के, पहले सजा काट चुके लोग, नशे से जूझ रहे लोग, बाहर से आए अप्रवासी। उन्हीं के बीच उन्हें लगा कि हाँ, ये मेरा कबीला है, ये मेरे लोग हैं।
लेकिन इसी दुनिया में वो नशे की तरफ भी खिंचे?
हाँ, ये कड़वी सच्चाई है, खासकर हेरोइन की लत। वो उनकी जिंदगी का एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अंधेरा दौर था। इसने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था एक तरह से।
और करियर पर भी असर पड़ा होगा जाहिर है।
जबरदस्त, करियर लगभग पटरी से उतर ही गया था। पर शायद इसी अनुभव ने उन्हें इंसान की कमजोरियों, उसकी लाचारी और खुद को तबाह करने की फितरत को बहुत करीब से दिखाया।
लेकिन वो इससे उभरे, शेफ बने?
हाँ, पर ये कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, मतलब रातों रात कुछ नहीं हुआ। लाइन कुक से एग्जीक्यूटिव शेफ तक का सफर बहुत धीमा था, बहुत संघर्ष भरा। आखिरकार न्यूयॉर्क में एक जाना माना फ्रेंच रेस्टोरेंट था, ब्रासरी लेस हॉल्स।
हाँ, सुना है मैंने।
वहां उन्हें पहचान मिली, वहां वो अपनी उस फ्रांसीसी ट्रेनिंग और जुनून को सही मायने में दिखा पाए।
और फिर आया साल 2000, किचन कॉन्फिडेंशियल।
हाँ, वो किताब जिसने सब कुछ बदल दिया। वो एक धमाका था, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि किचन के अंदर की इतनी कच्ची बेबाक कहानी इतनी बड़ी हिट हो जाएगी।
एक गुमनाम सा शेफ जो नशे से जूझ चुका था, वो अचानक लिटरेरी स्टार, टीवी पर्सनालिटी बन गया।
बिल्कुल, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जिसका अक्स हमें मीडियम रॉ में ज्यादा गहराई से दिखता है। देखो, शोहरत आई, पैसा आया, पहचान मिली, दुनिया भर में घूमने का मौका मिला,
एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात कहने का।
सही, लेकिन साथ में आई नई चिंताएं। मीडिया की नजर हर वक्त आप पर है, एक जिम्मेदारी का बोझ आ गया, और वो बड़ा सवाल, क्या मैं अब भी असली हूं? कहीं मैं बदल तो नहीं गया?
मीडियम रॉ लिखते समय तक तो वो काफी कुछ हासिल कर चुके थे, टीवी शोज, दुनिया भर की यात्राएं।
हाँ, नो रिजर्वेशंस जैसा हिट शो कर रहे थे, दुनिया घूम रहे थे खाने के बहाने, अलग अलग संस्कृतियों को, लोगों की कहानियों को समझ रहे थे, पिता बन चुके थे, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी।
लेकिन मीडियम रॉ ये बताती है कि अंदर कुछ और चल रहा था, एक कश्मकश।
बिल्कुल, वो अंदरूनी कश्मकश साफ दिखती है। वो खाने की दुनिया के इनसाइडर भी थे, उसके अंदर के आदमी, लेकिन साथ ही उसके सबसे बड़े आलोचक भी।
ये तो बड़ा विरोधाभास है।
हाँ, और वो इसी से जूझ रहे थे, क्या मैं उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया हूँ जिससे मैं कभी नफरत करता था? क्या शोहरत ने मुझे उन असली अनुभवों से दूर कर दिया है जिन्होंने मुझे शुरुआत में लिखने और बोलने के लिए प्रेरित किया था?
तो मीडियम रॉ एक तरह से एक ऐसे इंसान का पोर्ट्रेट है जो कामयाब तो है लेकिन बेचैन है।
हाँ, कामयाब है पर सुकून नहीं है, मंजा हुआ है पर अभी भी कुछ तलाश रहा है, और वो मध्यम आयु, पिता बनने की नई जिम्मेदारियां, अपना बढ़ता हुआ असर, इन सब चीजों से भी जूझ रहा है। कुछ निबंधों में ये तनाव साफ दिखता है। कभी वो एलिस वॉटर्स जैसे बड़े नामों की आलोचना करते हैं तो कभी फास्ट फूड की दुनिया में भी झांकते हैं।
तो उनके नजरिए को, उनके मूल विचारों को थोड़ा और कुलेदते हैं। क्या चीज थी जो उन्हें ड्राइव करती थी? सबसे जरूरी क्या था उनके लिए?
मेरे ख्याल से सबसे ऊपर एक ही चीज थी, ऑथेंटिसिटी, असलीपन।
असलीपन मतलब?
मतलब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, बाहरी दबाव कितने भी हों, अपने अंदर की आवाज के प्रति, अपने असली स्वभाव के प्रति ईमानदार रहना।
और दूसरी बात, वो जिंदगी की जटिलताओं को समझते थे, उन्हें स्वीकार करते थे।
हाँ, वो चीजों को सिर्फ ब्लैक या व्हाइट में नहीं देखते थे।
बिल्कुल नहीं,
उनमें वो एक तरह की, आप कह सकते हैं, यूरोपीय समझ थी। चीजों के विरोधाभासों को देखना, उनकी बारीकियों को समझना। वो मानते थे कि सच अक्सर बीच में कहीं होता है, कई रंगों का होता है। एक शेफ एक कलाकार भी है, एक कारीगर भी। रेस्टोरेंट एक बिजनेस भी है और कल्चर का हिस्सा भी।
और खाने को लेकर उनका नजरिया वो भी बड़ा दिलचस्प था, लोकतांत्रिक किस्म का।
हाँ, बहुत। वो मानते थे कि भाई, बढ़िया खाना किसी खास वर्ग या तबके की जागीर नहीं है। अक्सर सबसे अच्छा, सबसे यादगार स्वाद आपको बहुत ही साधारण, गुमनाम सी जगहों पर मिलता है।
स्ट्रीट फूड के तो वो बहुत बड़े फैन थे।
बिल्कुल, और उनका मानना था कि खाना वो धागा है जो अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी उनके लिए, वो दुनिया भर की किचनों में जरूरत, परंपरा और स्वाद का जो मेल देखते थे, उसे गहराई से समझते थे। मीडियम रॉ में वो स्ट्रीट फूड से लेकर महंगे मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स तक, हर अनुभव को इसी नजरिए से देखते हैं।
अच्छा, और उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? क्या चीज उन्हें आगे बढ़ाती थी?
देखिए, वो भी सीधी सादी नहीं थी। एक तरफ तो उनमें एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसी जिज्ञासा थी, अच्छा इस कल्चर में लोग क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे बनाते हैं,
खाने के पीछे की कहानी जानना।
हाँ, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक विद्रोही था। वो खाने की दुनिया के दिखावे, उसके पाखंड को पसंद नहीं करते थे। वो किचन में खटने वाले आम लोगों, लाइन कोक, डिशवॉशर, उनकी मेहनत, उनके हुनर का बहुत सम्मान करते थे, उन्हें आवाज देना चाहते थे।
और हुनर का सम्मान, ये बात आपने सही कही, वो अच्छी कुकिंग की बारीकियों की बहुत इज्जत करते थे।
बिल्कुल, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जिंदगी को अनुभव करके समझना चाहते थे, थ्योरी में नहीं, असलियत में।
जैसे?
जैसे वियतनाम की किसी गली में बैठकर नूडल्स खाना, या न्यूयॉर्क की किसी किचन में रात भर खटना। उनके लिए ये असली जिंदा अनुभव थे, ये किसी किताब में पढ़ने या आराम से बैठकर सोचने से कहीं ज्यादा कीमती थे। मीडियम रॉ ऐसे ही अनुभवों से भरी पड़ी है, जहां वो स्वाद के साथ साथ उस अनुभव के मायने भी ढूंढते हैं।
और मुश्किलों का सामना कैसे करते थे वो, खासकर वो नशे वाला दौर, उससे क्या सीखा?
उस दौर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, हारना, फिर उठ खड़ा होना, विनम्रता, माफी की अहमियत। मीडियम रॉ तक आते आते वो ज्यादा परिपक्व लगते हैं। वो मुश्किलों को एक तरह की क्रिएटिव एनर्जी में बदलना सीख गए थे।
वो मानते थे कि आराम शायद अच्छी चीज नहीं है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। वो मानते थे कि ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा इंसान के विकास और उसकी असली क्रिएटिविटी के दुश्मन हो सकते हैं। उन्होंने मुश्किल अनुभवों को गले लगाया, उन्हें जिंदगी का जरूरी हिस्सा माना।
और उनकी ईमानदारी, वो तो कमाल की थी। अपनी कमजोरियां, गलतियां सब खुलकर बताते थे।
हाँ, वो उनकी बेरहम ईमानदारी थी। वो उनका ट्रेडमार्क भी था और शायद मुश्किलों से लड़ने का उनका अपना तरीका भी। कोई लाग लपेट नहीं, सीधी बात।
अगर हम उनकी जिंदगी को देखें तो ऐसे कौन से तीन खास मोड़ थे जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी?
हाँ, तीन मोड़ तो बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला तो वही फ्रांस वाला अनुभव, वो सीप वाला।
हाँ, वो 12 साल की उम्र में, वो कहानी तो जैसे उनके जीवन का सार बन गई।
बिल्कुल, एक अनजाना स्वाद और उससे मिला एक ऐसा रोमांच, एक ऐसा एहसास कि असली मजा शायद जानी पहचानी सुरक्षित चीजों से बाहर है, थोड़ी चुनौती भरी, थोड़ी कच्ची चीजों में।
इसने सिर्फ खाने से उनका रिश्ता नहीं बदला,
इसने उनका दुनिया देखने का नजरिया बदल दिया।
हाँ, कह सकते हैं फ्रांस उनके लिए एक कल्चरल पोल बन गया।
और ये सोच कि अनजानी, यहां तक कि थोड़ी डरावनी लगने वाली चीजों को भी अपनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ये उनके पूरे जीवन का फलसफा बन गया। वो सीप एक सिंबल बन गया उनके लिए।
अच्छा,
और दूसरा बड़ा मोड़?
दूसरा था वो नशे की लत और उससे उबरने का सफर। जब वो न्यूयॉर्क में एक युवा शेफ के तौर पर पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, हेरोइन की लत ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था।
वो उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर रहा होगा। हाँ, शायद सबसे अंधेरा, लेकिन अजीब बात है, शायद सबसे ज्यादा क्रिएटिव भी। इस अनुभव ने उनके सारे नकाब उतार दिए, उन्हें अपनी हदों, अपनी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। और इससे उबरना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नशा छोड़ना नहीं था,
मतलब दिमागी तौर पे भी बहुत कुछ बदला होगा।
बिल्कुल, उन्हें अपनी पहचान, अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं, सब कुछ नए सिरे से गढ़ना पड़ा।
इस अनुभव ने उन पर क्या असर छोड़ा, क्या चीज बदली उनके अंदर?
बहुत कुछ। एक तो दूसरों के लिए, खासकर जो लोग नशे या मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उनके लिए गहरी हमदर्दी पैदा हुई। उन्हें जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौके की कीमत समझ आई।
और शायद वो स्ट्रीट क्रेड भी मिला, वो जमीनी हकीकत की समझ।
हाँ बिल्कुल, जिसने बाद में उनके लेखन और टीवी शोज को वो खास, वो असली रंग दिया।
वो जानते थे कि जिंदगी का सबसे निचला पायदान कैसा महसूस होता है, और यही अनुभव अजीब तरह से उनकी ताकत बन गया।
और तीसरा और आखिरी बड़ा मोड़,
वो था साल 2000 में किचन कॉन्फिडेंशियल का छपना और उसकी वो अविश्वसनीय कामयाबी,
जिसने उन्हें रातों रात एक गुमनाम शेफ से ग्लोबल हस्ती बना दिया। हाँ, और यहीं से वो सारी नई चुनौतियां शुरू हुई जिनका जिक्र मीडियम रॉ में बार बार आता है। मीडिया का लगातार अटेंशन, लोगों की उम्मीदें, आपके कहे हर शब्द का वजन, वो जिम्मेदारी।
ये ट्रांजिशन कैसा रहा होगा उनके लिए, मतलब किचन की गर्मी और शोर शराबे से निकलकर अचानक दुनिया की नजरों में आ जाना?
यकीनन बहुत बड़ा बदलाव था। उन्हें नए हुनर सीखने पड़े, अच्छे से इंटरव्यू देना, हजारों लोगों के सामने बोलना। अब वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बन रहे थे।
और इसका मतलब ये भी था कि वो जो खाना पकाने का फिजिकल काम था, वो जो हाथों का हुनर था, उससे दूर होना पड़ा।
हाँ, काफी हद तक उसे पीछे छोड़कर लेखन और टेलीविजन की ज्यादा दिमागी, ज्यादा अमूर्त दुनिया को अपनाना पड़ा। और ये कश्मकश भी जिससे वो मीडियम रॉ के दौर में लगातार जूझ रहे थे, क्या मैं अब भी एक कुक हूँ या मैं कुछ और बन गया हूँ, वो पहचान का संकट।
इन सब मोड़ों को, उनकी पूरी कहानी को देखते हुए, बॉर्डन की जिंदगी हमें, मतलब एक इंसान होने के नाते, क्या सिखाती है, क्या सबक मिलते हैं हमें?
देखो, उनकी कहानी ना कई लेवल्स पर हमसे जुड़ती है। उनका वो नशे से संघर्ष, फिर शोहरत का दबाव, असलीपन की वो लगातार तलाश, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी शक्ल में गुजरते हैं।
हाँ, ये बात तो है।
शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है। उनकी कहानी दिखाती है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, चाहे आप कितना भी नीचे क्यों ना गिर गए हों, वापसी की, खुद को बदलने की, बेहतर बनाने की गुंजाइश हमेशा रहती है।
और वो जो तनाव है, एक तरफ कामयाबी और दूसरी तरफ अपने उसूलों पर, अपने असलीपन पर टिके रहना, ये भी तो कितना जाना पहचाना लगता है।
बिल्कुल, खासकर आज की दुनिया में। और एक और बात देखो, आज की दुनिया हर चीज का सीधा सपाट जवाब चाहती है, हर चीज ब्लैक या व्हाइट में। बॉर्डन हमें जिंदगी की जटिलताओं को, उसकी ग्रे शेड्स को, उसकी अपूर्णताओं को स्वीकार करना सिखाते हैं।
और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी जिम्मेदारी से किया।
हाँ, उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों के बीच समझ बढ़ाने की कोशिश की, उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज अक्सर सुनी नहीं जाती, चाहे वो किचन के कर्मचारी हों या दूर दराज के देशों के आम लोग। उनकी जिंदगी इस बात पर जोर देती है कि अनुभव, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, अपने आप में कीमती है, उससे भागो मत।
और दुखद बात यह है कि उनकी कहानी आखिर में मानसिक स्वास्थ्य के संघर्षों पर भी रोशनी डालती है और मदद मांगने की जरूरत को भी कहीं ना कहीं रेखांकित करती है। ये एक बहुत ही मानवीय कहानी है जिसमें सब कुछ है, जीत हार, रोशनी अंधेरा।
सही कहा। तो अगर इस सारी बातचीत को समेटना हो, वो कौन सी तीन मुख्य बातें या सीख हैं जो हम बॉडेन और मीडियम रॉ से ले सकते हैं?
पहली मुझे लगता है एक भावनात्मक सीख है कि जिंदगी में कभी भी, यहाँ तक कि जब आप बिल्कुल टूट चुके हों, सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हों, तब भी गहरे बदलाव और वापसी की, मुक्ति की उम्मीद बाकी रहती है। और बॉर्डन का अपनी कमजोरियों को इतनी ईमानदारी से सबके सामने रखना इसे और भी ताकतवर बनाता है। ये दिखाता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकारना भी एक तरह की हिम्मत है।
बिल्कुल। दूसरी क्या होगी?
एक बौद्धिक सीख।
हाँ।
एक बौद्धिक सीख ये कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये कल्चर का लेन देन है, पहचान बनाने का जरिया है और एक दूसरे को समझने की एक यूनिवर्सल भाषा है। बॉर्डन ने दिखाया कि अलग अलग कल्चर्स को उनके खाने के जरिए समझने के लिए सिर्फ पेट नहीं बल्कि खुला दिमाग, जिज्ञासा और सम्मान चाहिए। कैसे एक साथ बैठकर खाया गया खाना सियासी और सामाजिक दीवारों को कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही गिरा सकता है।
बहुत खूब। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख सबके लिए।
तीसरी एक सार्वभौमिक सीख ये कि असली संतुष्टि, असली खुशी शायद पारंपरिक कामयाबी या आराम में नहीं है, वो है दुनिया के साथ एक सच्चे गहरे जुड़ाव में, भले ही वो जुड़ाव कभी कभी मुश्किल या असहज क्यों ना हो। सुरक्षा के ऊपर अनुभव को चुनना, शायद यही बॉर्डन की जिंदगी का निचोड़ था। जोखिम उठाना, खुलकर जीना, दुनिया को उसकी सारी जटिलताओं, सारे रंगों के साथ अनुभव करना।
बहुत अच्छी तरह से समेटा आपने। बॉर्डन की विरासत यकीनन जटिल है, उसमें कई परतें हैं, लेकिन उनका संदेश शायद सीधा और साफ है। असली रहो, हमेशा सीखते रहो, जिज्ञासु रहो और दुनिया का स्वाद चखने से डरो मत, भले ही वो कभी कभी कड़वा ही क्यों ना लगे।
यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छूट जाता है, आज की इस सोशल मीडिया वाली दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी एक परफेक्ट चमकती हुई इमेज पेश करना चाहता है, बॉर्डन की ये कच्ची बेबाक ईमानदारी कितनी जरूरी है और शायद कितनी मुश्किल भी।
ये सोचने वाली बात है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कलेक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।